19वीं शताब्दी के आखिर तक लंदन दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। ट्रेड, फाइनेंस और लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन चुका था। लेकिन 1888 में लंदन के ईस्ट एंड से एक चौंकाने वाला केस सामने आता है, एक ऐसा केस जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है, जिसमें एक के बाद एक गरीब और मजबूर औरतों को विक्टिम बनाया जाता है। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उस किलर का पता नहीं चला। मानो मर्डर के बाद वो अंधेरों में कहीं गायब हो जाता था, और क्राइम की दुनिया में ये मर्डर आज तक एक बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। उस किलर के बारे में आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर लोगों ने उसे नाम दिया जैक द रिपर। ये पूरा इवेंट लंदन के एक शहर व्हाइट चैपल में घटता है। अगर बात करें इस शहर की, तो ये ओवर पॉपुलेटेड शहर था, एक स्लम एरिया जहाँ ज़्यादातर लोग गरीब और अनएम्प्लॉयड थे, जो इस स्लम में रहने को मजबूर थे। सात अगस्त 1888 की सुबह जॉन रीप सीढ़ियों से उतरकर अपने काम के लिए जा रहे थे। तभी सीढ़ियों के आखिर में जॉन को एक लेडी का बॉडी पड़ा हुआ दिखता है, जो कम्प्लीटली खून से लथपथ था। जॉन घबरा कर मदद के लिए नीचे भागता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस लेडी को 39 बार चाकू से चेस्ट और एब्डोमेन रीजन में मारा गया था। उस लेडी को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसका नाम मार्था ताबरम था। वह 39 साल की थी और उसके दो बच्चे थे। सालों पहले हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका था एंड सी वॉज इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये श्योर नहीं था कि उस दिन मार्था किस कस्टमर के साथ थी, और इस तरह से मार्था ताबरम पहली विक्टिम बनी। इकतीस अगस्त सुबह का वक्त था। रॉबर्ट पॉल अपने घर से निकलकर ऑफिस की तरफ जा रहे थे। तभी रॉबर्ट की मुलाकात चार्ल्स नाम के व्यक्ति से होती है। चार्ल्स रॉबर्ट से कहता है कि स्ट्रीट के पेवमेंट में एक लेडी की बॉडी पड़ी है। रॉबर्ट और चार्ल्स दोनों बॉडी के पास पहुंचते हैं। छूने से पता चलता है कि पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है, पर रॉबर्ट को लगता है कि शायद उसकी सांसें चल रही है। मगर बिना कोई मेडिकल मदद बुलाए वो दोनों वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए लेट हो रहा था और सोचा कि जाते हुए रास्ते में पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। बट उससे पहले ही कुछ पुलिस ऑफिशियल क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। पुलिस ने देखा उस लेडी के गले से खून बह रहा था। जब इस लेडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा, यह किलर कोई ऐसा है जिसे पूरा एनाटॉमिकल नॉलेज है। उसे एग्जैक्टली पता था कि किस जगह पर वाइटल ऑर्गन्स मौजूद है, क्योंकि उसने बस वाइटल ऑर्गन्स पर अटैक किया था। इस लेडी को आइडेंटिफाई किया जाता है मैरी एन निकोलस। 43 साल की थी और इसके 6 बच्चे थे, और मैरी भी प्रोस्टिट्यूशन से पैसा कमाती थी। आठ सितंबर, जॉन डेविस अपने अपार्टमेंट से उतर रहे थे और फिर सीढ़ियों के नीचे डेविस को एक लेडी का बॉडी खून से लिपटा हुआ दिखता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। बॉडी को देखकर पता चलता है कि उसके गले को काटा गया था, एब्डोमेन रीजन में बुरी तरीके से अटैक किया गया था। उस लेडी के एब्डोमेन को पूरा चीर कर इंटेस्टाइन को निकालकर चेस्ट और शोल्डर के पास रखा गया था। पुलिस के लिए यह अभी तक का सबसे डरावना और दर्दनाक क्राइम सीन था। क्राइम सीन को सर्च करने पर पुलिस को उस लेडी के पास एक कपड़ा का टुकड़ा और दो कंघे मिलता है, जो प्रिसाइसली किलर के द्वारा रखा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि विक्टिम के हाथ से दो ब्रास रिंग को फोर्सफुली निकाला गया था। इस केस में भी डॉक्टर ने कहा कि बॉडी में कोई मीनिंगलेस कट्स नहीं है और किलर को अच्छा एनाटॉमिकल नॉलेज है, क्योंकि बॉडी को प्रिसाइसली काटा गया था मानो पोस्टमार्टम रूम में काटा गया हो, और एब्डोमेन से कुछ पार्ट गायब थे। विक्टिम को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। उस लेडी का नाम एनी चैपमैन था। वह लगभग 47 साल की थी एंड सी वॉज ऑल्सो इन टू द बिजनेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। September 29, लगभग आधी रात को लुइस अपने घोड़े पर सवार होकर एक क्लब हाउस के पास से जा रहा था। लुइस उसी क्लब में एक एम्प्लॉय था। घोड़ा आगे बढ़ते हुए अचानक से लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। लुइस को लगा इसने शायद अंधेरे में कुछ सेंस किया होगा। फिर लुइस को शक होता है और घोड़े से उतरकर एक माचिस की तिल्ली जलाता है। फिर लुइस को एक लेडी की बॉडी पड़ी हुई मिलती है। उसने ये चेक नहीं किया कि वो जिंदा है या ड्रंक है। लुइस जल्द ही क्लब के अंदर चल रहे मीटिंग में जाकर सबको इन्फॉर्म करता है, और थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लुइस और कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए जाते हैं। इस इंसिडेंट के कुछ देर बाद ही रात के करीब 1 बजे के आसपास वहाँ से 1 किलोमीटर वेस्ट में कांस्टेबल एडवर्ड वॉटकिन को एक लेडी की बॉडी मिलती है। मानो उसका शरीर खून के तालाब में डूबा हुआ था। इस लेडी के गले को भी काटा गया था और पूरे इंटेस्टाइन को बाहर निकाल दिया गया था। पुलिस एंड डॉक्टर क्राइम सीन में पहुंचते हैं और पता चलता है कि इसे बस कुछ मिनटों पहले मारा गया है। पुलिस और डॉक्टर पहली लेडी के पास पहुंचते हैं, लेकिन इस लेडी का बस गला काटा गया था, बाकी बॉडी पे कोई निशान नहीं था। माना जाता है कि लुईस जब घोड़े से आ रहा था तब वो किलर अपना काम कर रहा था, लेकिन लुईस को देखकर वो वहां से भाग जाता है और गुस्से में आकर दूसरी लेडी को मार देता है। हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो इन दोनों मर्डर को कनेक्ट कर सके। क्लब हाउस के पास वाले लेडी को आइडेंटिफाई किया गया और पता चला 44 साल की एलिजाबेथ स्ट्राइड थी एंड सी ऑल्सो मेड हर लिविंग थ्रू प्रोस्टिट्यूशन। दूसरी लेडी को भी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, जिसका नाम कैथरीन एडोविस था। वो 46 साल की थी और उसके 5 बच्चे थे। रिपोर्ट्स में बताया गया कि कैथरीन को भी बाकी मर्डर्स की तरह ब्रूटली मारा गया था। एब्डोमेन रीजन को चीरकर लेफ्ट किडनी को बाहर निकाल लिया गया था। कैथरीन के बॉडी से कुछ दूर एक दीवार पे एक कपड़ा का टुकड़ा चिपका हुआ था, जिसमें मैसेज लिखा था कि द जीवीज आर द मेन दैट विल नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नथिंग। और वो कपड़ा का टुकड़ा कैथरीन के एप्रेन से काटा गया था, लेकिन ये आज तक कन्फर्म नहीं है कि यह मैसेज किलर ने लिखा था। इस केस के बाद पुलिस को बहुत सारे लेटर्स मिले जिसमें यह क्लेम किया जा रहा था कि वो किलर है, और नीचे लिखा होता था योर्स ट्रूली जैक द रिपर। लेटर्स का हैंडराइटिंग और कपड़े के टुकड़े में लिखा मैसेज का हैंडराइटिंग के बीच कोई सिमिलैरिटी नहीं था, और इन लेटर से भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा था। फिर पुलिस को एक लेटर के साथ एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक किडनी था जो शायद कैथरीन का था। फिर पुलिस सारे लेटर्स को पब्लिकली अवेलेबल करवाती है ताकि लोग हैंडराइटिंग पहचान सके, मगर इससे कुछ सामने नहीं आता है। बट जैक द रिपर नेम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुका था। नौ नवंबर, प्रॉपर्टी ओनर जॉन मैकार्थी अपने असिस्टेंट थॉमस ब्रावर को रेंट कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। ब्रावर एक रूम में जाकर नॉक करता है बट अंदर से कोई आंसर नहीं मिलता, तो वो खिड़कियों के पास जाकर पर्दे हटाकर अंदर की तरफ देखता है और फिर वहाँ एक लेडी बेड पे खून से लिपटी हुई थी। उसके पूरे शरीर को बड़ी बेरहमी से काटा गया था। पुलिस एंड डॉक्टर इस सीन को देखकर शॉक्ड थे। बॉडी के हर ऑर्गन को काटकर अलग कर दिया गया था, गला काटा गया था, विक्टिम के फेस पर भी अटक किया गया था। इस लेडी का नाम मैरी जेन केली था। बताया जाता है कि मैरी जेन अपनी मिड ट्वेंटीज़ में थी और शायद ये सबसे यंग विक्टिम थी। मैरी कुछ दिन पहले तक जॉन बर्नेट नाम के आदमी के साथ रहती थी, बट वो लोग अलग हो जाते हैं बिकॉज जॉन डिड नॉट लाइक हर प्रोस्टिट्यूशन वर्क। और मैरी की कहानी भी मिस्टीरियस है क्योंकि वो फेक आईडी पे यहाँ रहती थी। मोस्ट लाइकली मैरी जेन ही इस रिपर की आखिरी विक्टिम थी। बट सवाल है कि उसने ये बंद क्यों किया? क्या उसने सुसाइड कर लिया था, या फिर दूसरे क्राइम के लिए उसे जेल हो गया, या फिर दूसरे देश में माइग्रेट कर गया था? इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं, और आज तक ना ही हमें पता चला कि कौन था ये जैक द रिपर।